अनिवार्य ओपनिंग नरेशन, अनिवार्य ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैनेट फिच के काफी चर्चित और कह सकते हैं प्रभावशाली उपन्यास व्हाइट ओलियंडर के बारे में।
हाँ, 1999 में आया था ये उपन्यास और आते ही मतलब बेस्ट सेलर बन गया, ओपरा बुक क्लब में भी चुना गया।
बिल्कुल, और सिर्फ बेस्ट सेलर ही नहीं, इसने अपनी कहानी, अपनी भावनात्मक गहराई से पढ़ने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ी। 2002 में इस पर फिल्म भी बनी थी।
और जैनेट फिच का जो लॉस एंजलिस शहर से जुड़ाव है ना, वो उनकी राइटिंग में साफ झलकता है। उनकी भाषा में एक काव्यात्मकता है।
सही कहा, वो महिलाओं के रिश्तों की उलझनों को और इंसानी मन की गहराइयों को बहुत बारीकी से पकड़ती हैं।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी उपन्यास के इर्द गिर्द रहेंगे। इसकी कहानी क्या है, जो मुख्य पात्र है एस्ट्रिड मैग्नसन, उसकी पूरी यात्रा कैसी रही
और कौन से मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं जो इसे खास बनाते हैं।
हाँ, और साहित्य में इसकी जगह कहाँ है, इसे हम उन कमिंग ऑफ एज कहानियों के संदर्भ में भी रखकर देखेंगे जो अमेरिकी परिवार के थोड़े स्याह पहलुओं को सामने लाती हैं।
तो कहानी हमें ले चलती है लॉस एंजलिस, जहां हमारी मुलाकात होती है 12 साल की एस्ट्रिड मैग्नसन से।
और उसकी माँ इनग्रिड से।
हाँ, इनग्रिड, जो असाधारण रूप से सुंदर है, प्रतिभाशाली है, एक कवयित्री है, लेकिन उतनी ही आत्ममग्न भी।
उनकी अपनी एक दुनिया है ना, माँ बेटी की, कला, कविता, फिलॉसफी।
बिल्कुल, और एक तरह का बौद्धिक गुरूर भी। इनग्रिड खुद को आम दुनिया से अलग वाइकिंग्स का वंशज मानती हैं।
जैसे वो और एस्ट्रिड एक खास किले में रहते हो, कला का किला।
हाँ, और एस्ट्रिड उसमें उनकी सबसे वफादार साथी, लेकिन फिर इस किले में दरार पड़ती है
जब उनका प्रेमी बैरी कोलकर उन्हें छोड़ देता है
और इनग्रिड ये झेल नहीं पाती, बिल्कुल नहीं, तो वो बदला लेती हैं।
और बदला भी कैसे, व्हाइट ओलियंडर से, सफेद कनेर के फूल से बने जहर से।
हाँ, और ये कोई आवेश में किया गया काम नहीं। बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझकर वो बैरी की हत्या करती हैं। ये उनके कैरेक्टर की खतरनाक गहराई दिखाता है।
और यही ये उपन्यास का जो सेंट्रल सिंबल है व्हाइट ओलियंडर, वो सामने आता है।
बिल्कुल, फूल जो दिखने में इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक,
लेकिन जिसका हर हिस्सा जहरीला है, जानलेवा है, इंग्रिड की तरह ही।
एकदम सही, सतह पर कला और सौंदर्य, लेकिन अंदर एक घातक जहर।
बिल्कुल।
फिच ने ये रूपक कमाल का इस्तेमाल किया है।
इस कत्ल का नतीजा एस्ट्रिड के लिए भयानक होता है।
भयानक से भी ज्यादा, इंग्रिड को उम्र कैद हो जाती है और 12 साल की एस्ट्रिड वो अचानक लॉस एंजलिस के फॉस्टर केयर सिस्टम के हवाले कर दी जाती है।
उसके बचपन का अंत एक झटके में।
हाँ, और एक बहुत ही अनिश्चित, डरावने भविष्य की शुरुआत।
तो यहीं से मतलब उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू होता है। एस्ट्रिड को अब इस फॉस्टर केयर सिस्टम की मुश्किलों से तो गुजरना ही है।
जो अपने आप में बहुत क्रूर हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, पर साथ ही उसे अपनी माँ के उस जबरदस्त, लगभग कुचल देने वाले असर से आजाद होकर अपनी पहचान भी बनानी है।
और इस सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या हम अपनी जड़ों के जहर से पूरी तरह बच सकते हैं?
कितना हिस्सा हमारी परवरिश तय करती है और कितना हमारे अपने चुनाव।
खासकर जब इनग्रिड जेल में होके भी एस्ट्रिड की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है अपने खतों के जरिए।
एस्ट्रिड की ये यात्रा उसे कई पालक घरों, फॉस्टर होम्स तक ले जाती है। हर घर एक अलग दुनिया है।
एक नया सबक और अक्सर एक नया जख्म। उसका पहला पड़ाव है स्टार थॉमस का घर।
स्टार थॉमस, वो कौन है?
स्टार पहले शराबी थी, स्ट्रिपर थी, पर अब वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन गई है। बहुत कट्टर।
अच्छा।
उसका घर एकदम धार्मिक जोशीलेपन से भरा है, उपदेश, भजन, और उसका एक अस्थिर सा प्रेमी है रे।
तो एस्ट्रिड जो अपनी माँ के उस नास्तिक बौद्धिक माहौल से आई है, उसके लिए तो ये बिल्कुल उल्टा माहौल होगा।
जबरदस्त कल्चरल शॉक। यहाँ धर्म है, भावनाएं हैं, पर वो भी थोड़ी अजीब, अस्थिर सी। स्टार का विश्वास शायद सच्चा हो, पर उसमें असुरक्षा बहुत है। और यहाँ भी इनग्रीड का साया है। एस्ट्रिड अनजाने में अपनी माँ के खतों से प्रभावित होकर रे के साथ एक तरह का खतरनाक खेल खेल बैठती है। और जब स्टार को पता चलता है तो वो ईर्ष्या और नशे में एस्ट्रिड पर गोली चला देती है।
गोली चला देती है, ये तो बहुत भयानक है।
हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे जो रिश्ते देखभाल का दावा करते हैं वो भी कितने हिंसक हो सकते हैं।
ये एस्ट्रिड का पहला कड़वा सबक है कि माँ जैसी दिखने वाली औरतें भी खतरनाक हो सकती हैं।
बिल्कुल, ये उसे अंदर से और कठोर बना देता है।
इसके बाद वो कहाँ जाती है?
गोली लगने के बाद वो थोड़े थोड़े समय के लिए दो और घरों में रहती है, एक मार्वल का घर जहां सब कुछ लेन देन पर आधारित है, कोई प्यार व्यार नहीं।
सिर्फ सर्वाइवल।
हाँ, एस्ट्रिड वहां हालात के हिसाब से ढलना, कठोर बनना सीखती है। फिर अमेलिया का घर आता है, वो अमीर है पर घर में कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं।
वहां एस्ट्रिड को नजरअंदाज किया जाता है।
बिल्कुल, तो वो अदृश्य होना सीख लेती है, खुद को भूखा रखना ताकि किसी का ध्यान ही न जाए।
ये अनुभव उसे जिंदगी की असलियत दिखा रहे हैं कि कैसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है
और कैसे बचने के लिए कभी कभी खुद को मिटाना भी पड़ता है।
इन सब के बाद वह पहुंचती है क्लेयर रिचर्ड्स के घर।
हाँ, और ये पड़ाव बहुत नाजुक है, बहुत महत्वपूर्ण। क्लेयर एक पूर्व एक्ट्रेस है, खूबसूरत, सेंसिटिव, पर अंदर से बहुत इनसिक्योर।
अच्छा,
उसके घर में एस्ट्रिड को पहली बार, मतलब पहली बार असली प्यार, देखभाल और स्थिरता महसूस होती है।
जैसे कोई मुरझाया हुआ पौधा खिलने लगे।
बिल्कुल वही। यहाँ हमें वो थीम दिखती है, एक सच्चे प्यार, एक सुरक्षित परिवार की तलाश। क्लेयर एस्ट्रिड को वो माँ का प्यार देती है जिसकी वो भूखी थी।
तो एक उम्मीद जगती है कि शायद एस्ट्रिड को घर मिल गया।
हाँ, एक पल के लिए ऐसा लगता है, लेकिन इंग्रिड
वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है?
बिल्कुल नहीं। जेल से वो अपने खतों से क्लेयर की कमजोरियों पर वार करती है, उसके मन में शक और डर पैदा करती है।
एस्ट्रिड और क्लेयर के रिश्ते में जहर घोलती है।
हाँ, धीरे धीरे। और जब क्लेयर का पति भी उसे छोड़ देता है, वो टूट जाती है।
और फिर वो हो जाता है जिसकी एस्ट्रिड ने कल्पना भी नहीं की होगी।
हाँ, क्लेयर इंग्रिड की मनोवैज्ञानिक हमलों और अपनी निराशा से हारकर आत्महत्या कर लेती है।
ओह, और एस्ट्रिड को उसकी लाश मिलती है।
हाँ, ये एस्ट्रिड के लिए शायद सबसे दर्दनाक मोड़ है।
बिल्कुल, उसे अपनी माँ की जो विनाशकारी ताकत है उसका पूरा अंदाजा हो जाता है।
कि इंग्रिड न सिर्फ खुद दुखी है, बल्कि वो किसी और को, खासकर एस्ट्रिड को, खुश या आजाद नहीं देख सकती।
यह अनुभव एस्ट्रिड को तोड़ता तो है, पर शायद एक तरह से आजाद भी करता है।
हाँ, उसे ये समझ आ जाता है कि अगर जीना है तो इंग्रिड के साए से बाहर निकलना ही होगा। अब कोई भ्रम नहीं बचता।
क्लेयर की मौत के बाद एस्ट्रिड कैसी हो जाती है?
वो पहले से कहीं ज्यादा कठोर, बदली हुई। अब वो पहुंचती है रेना ग्रुशेंका के घर।
रैना कौन है?
रेना रूस से आई एक अप्रवासी है, बहुत प्रैक्टिकल, मुंह फट, थोड़ी ठग किस्म की, छोटे मोटे धंधे चलाती हैं।
अच्छा, एक और बिल्कुल अलग दुनिया।
हाँ, यहाँ इमोशंस, आर्ट, ब्यूटी की कोई जगह नहीं, सब कुछ कैश पर है, लेन देन। रैना एस्ट्रिड को दुनिया की असलियत सिखाती है, सौदेबाजी, खुद को एक चीज की तरह इस्तेमाल करना।
सेल्फ कमोडिफिकेशन।
हाँ, एस्ट्रिड इस माहौल में ढल जाती है, बाल प्लैटिनम करा लेती है, अलग तरह के कपड़े पहनती है, अपनी आर्ट बेचकर पैसा कमाती है।
दुनिया को एक बाजार की तरह देखती है।
पर हैरानी की बात यह है कि रेना के इस क्रूर यथार्थवाद में एस्ट्रिड को एक अजीब सा अपनापन भी महसूस होता है, शायद इसलिए कि रेना भी एक सर्वाइवर है।
इसी घर में उसकी मुलाकात पॉल ट्राउट से होती है।
हाँ, पॉल ट्राउट, वो भी फॉस्टर केयर में पला बढ़ा है, एक कलाकार है, उनका दर्द उनकी कला उन्हें जोड़ती है, एक स्वस्थ रिश्ते की उम्मीद बनती है यहाँ।
फिर एस्ट्रिड 18 की हो जाती है।
और फॉर्मली फॉस्टर केयर सिस्टम से बाहर आ जाती है, आजादी की तरफ एक और कदम।
वो पॉल के साथ बर्लिन चली जाती है।
हाँ, बर्लिन, कला का शहर, नई शुरुआत का शहर, वहां वो पूरी तरह अपनी कला पर फोकस करती है।
वो सूटकेस वाले इंस्टॉलेशन बनाती
हाँ,
है।
फेंके हुए पुराने सूटकेसेस, हर सूटकेस उसके अतीत के किसी घर, किसी अनुभव का प्रतीक।
कला उसके लिए एक जरिया बन जाती है अपने बिखरे अतीत को समझने का, उसे एक शक्ल देने का
अपने जख्मों को प्रोसेस करने का,
और अपनी एक नई पहचान गढ़ने का।
और बर्लिन में खुद को स्थापित करने के बाद वो एक आखिरी सामना करने का फैसला करती है।
बिल्कुल, एक वयस्क, एक कलाकार के तौर पर वो जेल में अपनी माँ इंग्रिड से मिलने जाती है।
ये मुलाकात बहुत अहम है, ये किसी बदले या माफी के लिए नहीं है, माई है, पर साथ ही अपनी नफरत और अकेलेपन में फंसी एक दयनीय औरत भी।
वो इंग्रिड की ताकत और उसके जहर दोनों को पहचानती है और स्वीकार करती है।
हाँ, ये मुलाकात एस्ट्रिड की तरफ से अपनी आजादी की, अपनी अलग पहचान की एक खामोश घोषणा है।
वो मान लेती है कि इंग्रिड हमेशा उसकी माँ रहेगी, उसका हिस्सा रहेगी।
लेकिन अब इंग्रिड उसे डिफाइन नहीं कर सकती। एस्ट्रिड अब अपने अनुभवों का, अपनी सभी पालक माताओं का, अपने जख्मों का, अपनी कला का एक मिलाजुला रूप है, एक मोज़ेक।
पर इस मोज़ेक की आखिरी तस्वीर अब उसकी अपनी है। वो कड़वाहट की जगह समझ और अलगाव चुनती है।
वो अब अपनी कहानी की लेखिका है।
एस्ट्रिड की यह पूरी यात्रा कई गहरे विषयों को सामने लाती है। उन पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जहरीला नार्सिसिस्टिक प्यार,
हाँ, टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लव, इनग्रिड और एस्ट्रिड का रिश्ता, वो ओलियंडर का सिंबल यहाँ कितना फिट बैठता है,
दिखाता है कि कैसे प्यार भी कब्जा बन सकता है, कंट्रोल बन सकता है।
और इनग्रिड का प्यार एस्ट्रिड को आजाद करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया है। वो एस्ट्रिड को अपनी परछाई समझती है, एक अलग इंसान नहीं।
इसीलिए वो एस्ट्रिड के हर उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है जो उसे इनग्रिड से दूर ले जा सकता है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है पहचान बनाना और स्वतंत्रता, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंस।
एस्ट्रिड का पूरा संघर्ष यही है, माँ के असर से अलग एक मैं को खोजना, उसे बनाना।
और ये उपन्यास दिखाता है कि पहचान कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये लगातार गढ़ी जाती है अनुभवों से, रिश्तों से, दर्द से, कला से।
आलादी का मतलब माँ से पूरी तरह कट जाना नहीं, बल्कि उसके असर को समझकर उससे आगे निकल जाना है।
और ये पहचान सिर्फ माँ के विरोध में नहीं बनती, बल्कि उन सभी फॉस्टर घरों के अनुभवों से भी बनती है। हर रिश्ता, चाहे कितना भी अधूरा या दर्दनाक हो, एस्ट्रिड के मोज़ेक में एक टुकड़ा जोड़ता है।
स्टार की कट्टरता, क्लेयर का वो नाजुक प्यार, रेना की वो कठोर प्रैक्टिकलिटी, ये सब मिलकर एस्ट्रिड को बनाते हैं।
सही। तीसरा अहम विषय है असली प्यार और परिवार की तलाश।
हाँ, एस्ट्रिड की यात्रा हमें प्यार और देखभाल के कई अलग अलग मॉडल दिखाती है और पारंपरिक माँ और परिवार की धारणा पर सवाल उठाती है।
क्या क्लेयर का प्यार सच्चा था? क्या रेना की कठोरता में भी एक तरह की देखभाल थी? शायद। परिवार खून के रिश्ते से ज्यादा अनुभवों और चुनावों से बनता है।
और शायद असली प्यार की एक पहचान दूसरे की आजादी का सम्मान करना है, जो इनग्रिड के प्यार में है ही नहीं।
हाँ, पॉल ट्राउट के साथ जो रिश्ता बनता दिखता है वो शायद इसी स्वस्थ प्यार की तरफ इशारा है, साझा अनुभवों पर बना, निर्भरता पर नहीं।
फिर आता है सर्वाइवल और रेजिलियंस का थीम, जिंदगी में टिके रहना, झेल जाना।
ये कहानी इंसान की हिम्मत की कहानी तो है, लेकिन ये ट्रॉमा की कीमत को भी नजरअंदाज नहीं करती। एस्ट्रिड बच निकलती है, पर गहरी चोटों के साथ।
ऐसा नहीं कि जो हमें मार नहीं पाता वो हमें मजबूत बनाता है, बल्कि ये कि ट्रॉमा हमें बदल देता है, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है।
एस्ट्रिड की कठोरता, उसका वो इमोशनल कवच, वो उसकी ताकत भी है और उसके जख्मों का निशान भी। लचीलापन यहाँ सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि दर्द को क्रिएटिविटी में बदलना भी है।
सौंदर्य और खतरे का द्वंद्व भी है, ड्यूअलिटी ऑफ ब्यूटी एंड डेंजर।
हाँ, ओलियंडर फूल, इनग्रिड की सुंदरता, लॉस एंजलिस शहर की चमक,
क्लेयर का प्यार भी।
बिल्कुल। ये सभी खूबसूरत चीजें अपने अंदर खतरा छुपाए हैं। सतह के नीचे अंधेरा हो सकता है, सुंदरता जानलेवा हो सकती है।
और आखिर में कला, आर्ट एज सेल्वेशन, मुक्ति और समझ का साधन।
जहां इनग्रिड के लिए कला अपनी क्रूरता को सही ठहराने का बहाना है, वहीं एस्ट्रिड के लिए कला अपने बिखरे हुए जीवन को समझने, दर्द को शक्ल देने और खुद को फिर से बनाने का जरिया बनती है।
उसके वो सूटकेस इंस्टॉलेशन, वो उसके अतीत के बोझ को कला में बदलकर उससे आजाद होने की कोशिशें।
उपन्यास की जो कथा शैली है वो भी इसके असर को गहरा करती है। फर्स्ट पर्सन में है ना?
हाँ, वयस्क एस्ट्रिड पीछे मुड़कर अपने बचपन और किशोरावस्था को देख रही है, तो हमें घटना के वक्त के इमोशंस और बाद की समझ दोनों एक साथ मिलती हैं।
ये ड्यूअल कॉन्शियसनेस पाठक को एस्ट्रिड के अनुभव की गहराई तक ले जाती है।
सिंबल्स का इस्तेमाल भी कमाल है, ओलियंडर तो है ही, पर वो सांता एना हवाएं।
हाँ, वो बेचैनी, जुनून, बदलाव का प्रतीक बन जाती हैं। हर फॉस्टर घर अपने आप में एक अलग दुनिया है। रंगों का इस्तेमाल, खासकर सफेद रंग का,
पवित्रता भी और जहर भी।
बिल्कुल। और लॉस एंजलिस के जो सेंसरी डिटेल्स हैं, गर्मी, गंध, रोशनी, वो माहौल को एकदम जिंदा कर देते हैं।
और वो खत, इनग्रिड के खत।
हाँ, वो सिर्फ प्लॉट को आगे नहीं बढ़ाते, वो सीधे इनग्रिड की सोच, उसकी मैनिपुलेशन, एस्ट्रिड पर उसके कंट्रोल को दिखाते हैं। पाठक को सीधे विलेन के दिमाग में झांकने का मौका मिलता है।
एस्ट्रिड की भाषा भी, वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगती है, काव्यात्मक भाषा।
हाँ, जो इनग्रिड के असर और उसके असाधारण अनुभवों को दिखाता है।
हाँ। और कैसे उपन्यास अलग अलग जीवन दर्शनों, विश्वासों, प्यार की धारणाओं को आमने सामने रखता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है।
कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ।
एक जगह एस्ट्रिड सोचती है, सवाल यह नहीं था कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं, बल्कि यह कि क्या मैं स्वयं बनी रहूंगी।
ये उसकी पूरी यात्रा का सार है।
हाँ, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आत्मा को बचाए रखना, खासकर जब दुनिया आपको बदलने पर तुली हो।
ये दिखाता है कि कैसे वो अपनी माँ के पाठों को लेती है पर उन्हें अपने अनुभव से नया मतलब देती है।
इंग्रिड का भी एक कथन है उसके दर्शन को लेकर। हाँ, वो कहती है, अकेलापन मनुष्य की नियति है, इसे साधो। जिस तरह यह तुम्हारे भीतर सुरंग बनाता है वो तुम्हारी आत्मा को विकसित होने के लिए जगह देता है।
ये इंग्रिड की वो रोमांटिक पर खतरनाक सोच है, दुख और अलगाव को महानता के लिए जरूरी मानना।
एस्ट्रिड इस विचार को जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करती है पर आखिरकार इससे आगे बढ़ती है ताकि वो असली इंसानी जुड़ाव बना सके।
और वो फीनिक्स वाला रूपक, फीनिक्स को उभरने के लिए जलना पड़ता है।
हाँ, विनाश और पुनर्जन्म। एस्ट्रिड को अपने पुराने भ्रम, अपनी निर्भरता, अपनी माँ की छवि, सबको जलाना पड़ता है ताकि वो एक आजाद इंसान के रूप में उभर सके।
ये बदलाव के दर्द और उसकी जरूरत दोनों को दिखाता है।
इस उपन्यास का असर बहुत गहरा होता है, कहानी विचलित करती है, दिल दहलाती है।
हाँ, पर अंत में कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक प्रेरणा भी है। ये कोई आसान जवाब या हैप्पी एंडिंग नहीं देता।
बिल्कुल, ये मातृत्व की जो पारंपरिक पवित्र छवि है उसे तोड़ता है, दिखाता है कि माँ का प्यार भी कितना विनाशकारी हो सकता है।
और इंसान के लचीलेपन की सीमाओं और उसकी कीमत को दिखाता है। परिवार, पहचान, प्यार, ताकत, इन सब के बीच की महीन रेखाओं पर सोचने को मजबूर करता है।
और लॉस एंजेलिस की वो सेटिंग, सपनों और भ्रमों का शहर, जहाँ चमक के पीछे अक्सर खालीपन या खतरा छुपा होता है, वो भी कहानी का अहम हिस्सा है।
अंत में ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि पहचान सिर्फ विरासत में नहीं मिलती, उसे अक्सर दर्द, अनुभव और कला की आग में तपाकर खुद गढ़ना पड़ता है।
और ये भी कि कैसे कला जिंदगी के बिखरे हुए दर्द भरे टुकड़ों को जोड़कर न सिर्फ समझने का बल्कि खुद को फिर से रचने और आजाद करने का एक शक्तिशाली रास्ता बन सकती है।
अनिवार्य समापन पंक्ति, अनिवार्य समापन पंक्ति। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।